ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चर्चा। केंद्रीय सुरक्षा समिति ने सुरक्षा संयंत्र को उच्च सतर्कता पर रखने का किया निर्णय। 10वें राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। रोजगार सृजन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने किया सरकार का ध्यानाकर्षण। और भारत के हमले में पाकिस्तान में 26 लोगों की मौत, भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की विश्व के नेताओं ने किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक रणनीति तय की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में आज हुई परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की गई। सुरक्षा संयंत्र को उच्च सतर्कता पर रखने का बैठक ने निर्णय किया है। नेपाल भारत सीमा और विमानस्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है। इससे पहले गृहमंत्री रमेश लेखक की अध्यक्षता में केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें भारत पाकिस्तान तनाव के नेपाल पर पड़ने वाले प्रभाव और दोनों देशों में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता रामचंद्र तिवारी ने बताया कि सीमा से लेकर हवाई अड्डों तक सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी। 10वां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। गोरखा पत्र के प्रकाशन की वर्षगांठ के अवसर पर वैशाख 24 आज के दिन को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1959 में वैशाख 24 को साप्ताहिक गोरखा पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। सरकार ने 2073 में पत्रकारिता दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लेने के बाद से ये दिवस वैशाख 24 को मनाए जाने लगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार और वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से देश के विभिन्न पत्रकारों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आज आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2081 से विपुल पोखरियर और गणेश बसनेत को सम्मानित किया। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नकद और सम्मान पत्र से युक्त है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पौडेल ने राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2081 से उदयपुर के पत्रकार दिलीराम खतिवड़ा, कास्की के दीपेंद्र श्रेष्ठ, संखुआ सभा के दीपेंद्र बांतवा, बांगलुंग के विमल गौतम, तनहू के सागर पंडित और कैलाली की पत्रकार लोंगसरी कुवर को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की राशि 1 लाख रूपये नकद और सम्मान पत्र है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा आयोजित वरिष्ठ पत्रकार सम्मान एवं राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि पत्रकारिता परिवर्तन की वाहक और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि नेपाल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में नेपाली पत्रकारिता की भूमिका उल्लेखनीय रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकारिता के लिए लोकतंत्र अनिवार्य शर्त है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान ने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी है। संविधान की इस भावना के अनुरूप पत्रकारों को निर्भय और स्वतंत्र रूप से समाचार प्रसारित करने का माहौल बनाना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समाचार लिखने के आधार पर पत्रकार असुरक्षित न हो, इस स्थिति का अंत होना चाहिए। जोखिम मुक्त वातावरण में समाचार संकलन और प्रसारण सुनिश्चित करने की दिशा में सभी का ध्यान जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि सूचना प्रविधि के विकास के साथ बढ़ते सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता के उपयोग से आधारहीन और झूठी सूचना के प्रचार से जनता को भ्रमित करने का खतरा बढ़ा है। वर्तमान मीडिया के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नेपाली प्रेस इसका सामना करने में सक्षम है। समारोह में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग ने कहा कि नेपाल के संचार क्षेत्र को व्यवस्थित और मर्यादित बनाने के लिए सरकार ने मीडिया काउंसिल विधेयक, आम संचार विधेयक और सोशल मीडिया संबंधी विधेयक को आगे बढ़ाया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि गोरखा पत्र ने नेपाली भाषा का मानक तय किया है। नेपाल के सबसे पुराने प्रिंट माध्यम गोरखा पत्र दैनिक के 125वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि गोरखा पत्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नेपाली भाषा का मानक तय किया है। गोरखा पत्र प्रकाशन के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गोरखा पत्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने गोरखा पत्र के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इसने न केवल देश की सभ्यता और संस्कृति बल्कि अर्थव्यवस्था और नेपाली भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ओली ने चेतावनी देते हुए कहा कि आजकल कुछ मीडिया संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या कर रहे हैं। वे आज एक झूठ को सच बताकर फैलाते हैं और कल उसी की पुष्टि करने लगते हैं। गोरखा पत्र को इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि गोरखा पत्र दैनिक को एक सार्वजनिक सेवा प्रकाशन माध्यम के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गोरखा पत्र दैनिक के अध्यक्ष विपुल सुवेदी ने कहा कि गोरखा पत्र ने निष्पक्ष और पेशेवर पत्रकारिता का दायित्व निभाते हुए लगातार अपनी भूमिका अदा की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गोरखा पत्र के 125वें वर्ष में प्रवेश पर प्रकाशित स्मारिका युग साक्षी का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एवं गोरखा पत्र संस्थान के पूर्व अध्यक्ष विजय चालीसे सहित कई उत्कृष्ट पत्रकारों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि जनता को बिना वजह निराश करना एक तरह का अपराध है। ललितपुर में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश को बर्बादी की ओर धकेलने के बजाय हमें इसे आशावाद की दिशा में मोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, देश में विकास और समृद्धि के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री ओली ने युवाओं से निराश न होकर आशावादी बनने और अपने देश को स्वयं मजबूत बनाने में जुटे जाने का आग्रह किया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब नेपाल में आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक मतभेदों के बीच जनता में असंतोष बढ़ रहा है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में आगामी वर्ष 2082-83 की सरकार की वार्षिक नीति और कार्यक्रम पर चर्चा जारी रही। सांसदों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जल स्रोत, कृषि, सड़क एवं अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण लगायत क्षेत्रों में बजट आवंटन पर जोर दिया। सांसदों ने तराई मधेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पेयजल और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग की। बैठक में देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता, सुशासन सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को कम करने के उपाय पर सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा के सार्वजनिक नीति एवं प्रत्यायोजित विधान समिति की आज हुई बैठक में सांसदों ने गोरखा जिले के बारपा क्षेत्र में भूकंप के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्यों की आलोचना की। सांसदों ने कहा कि पुनर्निर्मित घरों में ग्रामीण क्षेत्र की मौलिकता और पारंपरिक शैली का अभाव है। भवनों के डिजाइन और नक्शे समय पर नहीं मिल पाने के कारण स्थानीय लोगों को वर्षों तक अस्थायी आश्रयों में रहना पड़ा। बारपाक में अभी भी पुनर्निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जो निर्माण हुआ है उसमें स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला को ध्यान में नहीं रखा गया है। समिति ने भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण से संबंधित निगरानी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए इन कमियों को उजागर किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत पाकिस्तान सीमा पर हुए हमले में पाकिस्तान में 26 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ सहित विश्व के नेताओं ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। पाकिस्तान ने भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा क्षेत्रों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम और बातचीत का आग्रह किया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए सीधी वार्ता करनी चाहिए। दोनों तरफ सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया है। कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। युद्ध की आशंका के बीच दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की संभावना की तलाश की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चर्चा। केंद्रीय सुरक्षा समिति ने सुरक्षा संयंत्र को उच्च सतर्कता पर रखने का किया निर्णय। 10वें राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। रोजगार सृजन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकर्षण। और भारत के हमले में पाकिस्तान में 26 लोगों की मौत, भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की विश्व के नेताओं ने किया आग्रह। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।